तथा परमहंसाना मुनीना ममलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कुंती महारानी कहती हैं, प्रभु आपको ईश्वर के रूप में, प्रकृति के नियंता के रूप में या अधोक्षक के रूप में, सर्वकाल देश व्यापी के रूप में कौन जान सकते हैं। तथा परमहंसाना मुनीना अमलात्मना, जो परमहंस है, जो आत्म अनात्म के विवेकी है, क्या स्पिरिचुअल है क्या मैटेरियल है, मैटेरियल को छोड़ करके जो स्पिरिचुअल लाइफ में है उनको परमहंस कहते हैं। तो परमहंस लोग आपको समझ सकते हैं, और मननशील जो हायर विषय का मनन करते हैं वे आपको समझ सकते हैं, और जिनका मन अमल है, अमलात्मना निर्मल है, जो राग द्वेष आदि से शून्य है, ऐसे महापुरुष आपको समझ सकते हैं। कथम पश्येम हि स्त्रियः, हम स्त्रियां भला आपको कैसे जान सकती। कुंती महारानी के मुख से ये रहस्य बहुत बारीक रूप से प्रकट हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ये सब लीलाएं क्यों करते हैं, क्यों अवतार लेकर के विविध लीला करते हैं, गोवर्धन धारण की लीला या गीता कहने की लीला, अपने मित्र का रथ हाँकते हैं यशोदा जी से इतना प्रेम करते हैं, या वसुदेव जी से, नंद महाराज से, क्यों करते हैं सब लीला। कुंती महारानी कहती है एक परमहंसों को, मुनियों को और निर्मल मन वाले महान पुरुषों के जीवन में अपने प्रति प्रेम पैदा करने के लिए आप करते हैं। भक्ति योग विधानार्थ, भक्ति योग उत्पन्न करने के लिए सब लीलाएं आप करते हैं। जब बड़े बड़े मुनीन्द्र आत्मा राम गण है या परमहंस अमलात्मा मुनिगण आपकी लीलाओं को देखते हैं, सुनते हैं, तो वे लोग आपके भक्त हो जाते हैं। तो वास्तव में भक्ति योग का प्रचार करने के लिए, उनको भक्त बनाने के लिए सब आप लीलाएं करते हैं, यही रहस्य है। लेकिन ये कह करके कहते हैं फिर हम स्त्रियां भला कैसे इसको जान सकते, आप क्यों ये सब लीलाएं करते हैं। पहला विशेषण दे रहे परमहंसा नाम तथा, परमहंसों को भक्त बनाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी मधुर हैं, खास करके भक्तों से प्रेम करने की लीला, जैसे अर्जुन के से उन्होंने प्रेम किया, इस प्रकार की लीलाओं को और उनके रूप गुण को सुन करके परमहंस मुनिजन सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के लिए दीवाना हो जाते हैं, कृष्ण के भक्त हो जाते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी। यदि भगवान इस प्रकार की लीला वृंदावन में नहीं किए होते, गोचारण की लीला, बंसी वादन की लीला, तो सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के भक्त नहीं हो पाए होते, लीला सुन करके भक्त हो गए। परमहंसों में सबसे श्रेष्ठ परमहंस सुखदेव गोस्वामी है, और ऐसे लोग मुनि होते हैं। मुनि का अर्थ होता है मननशील, जो भगवान के विशेषताओं का मनन करे, उनके रूप गुण लीला आदि को मन में सोचे, तो उसको मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ ये नहीं है कि अपने दुकान में बैठ करके पैसा गिने और मनन करे आज इतना मिला आज ये हुआ, मनन का ये मतलब नहीं। शुभ है आश्रय का मनन करना, भगवान का मनन करना। वैसे मनन तो सब करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, लेकिन भगवान के रूप में त्रिभंग ललित रूप, बंसी वादन, या अर्जुन के सारथ्य रूप का, सारथी रूप का, या जैसे तैसे कालिया के फण पर नृत्य करते समय, या गोवर्धन धारण किए हुए, गोचारण किए हुए, दवानल पान करते हुए, इन सब लीलाओं का जो मनन करता है तो उसको मुनि कहते हैं। तो मुनियों को और अमल आत्मा, जिनके आत्मा में मन में मल नहीं है, उनको अमलात्मा कहते हैं। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, मल क्या है मन का, मन में मल है किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष रखना, विषयों की लालसा, काम लोभ आदि मल है। जिन महान पुरुषों का चित्त अमल आत्मा है, अमल है, मल रहित है, उन लोगों के हृदय में अपने प्रेम को भरने के लिए, अपनी भक्ति देने के लिए आप सभी लीलाएं करते हैं। लेकिन भला हम स्त्रियां इसको कैसे जान सकती। ये कुंती महारानी का सहज दैन है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने जीवन में दैन में आना ये बहुत बड़ा गुण है। कुंती महारानी कृष्ण के सारे रहस्यों का उद्घाटन करके भी कहते हैं भला हम कैसे जान सकते हैं, हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं। लोक में देखा जाता है कि स्त्रियों में श्रद्धा अधिक होती है और यही कारण है कि कहीं पर कोई आध्यात्मिक या धार्मिक कोई गोष्ठी होती है तो उसमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है। देखा गया है सहज श्रद्धा होती है। पुरुषों में क्या है, पुरुषों में बहुत ज्यादा दार्शनिक मीमांसा करना, ये अच्छा ये बुरा ये बुरा, वो बहुत फंस जाते हैं। जितने भी उटपटांग मार्ग प्रचलित है दुनिया में भक्ति से विरुद्ध, ये पंथ वो पंथ, सब उसके संस्थापक सब पुरुष रहे हैं और उसमें से अधिकांश तो भगवान होकर के मर गए, भगवान थे इसके बाद मर गए भगवान। आज भी कम से कम एक दर्जन भगवान जीवित होंगे जगह जगह, यह भगवान वह भगवान वह भगवान, लेकिन भगवान की जो सत्ता है वह स्थिति हो काल और देश द्वारा बाधित, कुछ काल में रहे कुछ देश में रहे और इसके बाद समाप्त हो गए। लेकिन श्री कृष्ण वास्तविक भगवान है, ये सब थर्ड क्लास के नकली भगवान नहीं है। और जब जन्म हुआ तब कोई पता नहीं था, कुछ काल के बाद अगर 200-400 चेला बना लिए बस भगवान हो गए उसी दिन, क्योंकि चेला लोग सर्टिफिकेट देते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ अब आप भगवान हो गए। ये दुनिया में प्रचलित। तो श्री कृष्ण ऐसे सस्ते और थर्ड क्लास के ईश्वर नहीं है, वास्तव में वास्तविक ईश्वर है भगवान। और इस जगत में इतनी मधुर लीला करते हैं, ये राग द्वेष हीन और सार असार को, आत्मा और अनात्मा को जानने वाले और मननशील विद्वानों को भक्त बनाने के लिए ऐसी लीला करते हैं। भगवान की लीला सुन करके, उनको देख करके, उनके चरण की सुगंध सुन करके, कथा सुन करके लोग भक्त हो जाते हैं। यदि भगवान इस जगत में अवतार नहीं लिए होते, सब लीलाएं नहीं किए होते तो क्या सुनते हम, क्या सुनते और कैसे भगवान में चित्त लगता है। तो इस तरह से अपने सौंदर्य को, अपनी महिमा को, अपने भक्त परवशता को, भक्त वात्सल्य को भगवान प्रकट किए इस जगत में, अपनी करुणा को, अपनी कृपा को उन्होंने प्रकट किया। पुतना का वध करके तुरंत उसको वैकुंठ दिया, गोलोक दिया, कृपा प्रकट है। भगवान अतिशय कृपालु हैं और विशेष करके भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं। इसके साथ ही जगन्नाथ हैं, सारे जगत के जीवों से उनका स्नेह है, सबका पालन करते हैं, सबका पोषण करते हैं। ये लीला अवतार ग्रहण करके भगवान ये सब दिखाते हैं तब भगवान के प्रति बड़े बड़े लोग आकृष्ट होते हैं, और नहीं तो बस अलख निरंजन जगदीश परमात्मा ये सब अटकलबाजी करते रहते हैं और इसी में मर जाते हैं। कुछ ज्ञान होता नहीं, कुछ भी वास्तव में ज्ञान नहीं होता। भले वो कोई अध्यात्मवाद का नाटक कोई करे, लेकिन कोई जीवन में भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। भगवान मन में भी नहीं आते हैं, फिर भगवान को गलवाही देना, भगवान को चामर डुलाना, ये सब कहाँ सुलभ हो सकता है, या भगवान से रथ हाँकवाना। ब्रज में तो भगवान नंद बाबा के जूता को भी उठा करके लाते हैं, जूता लाते हैं नंद बाबा को पहनाते हैं, पीढ़ा लाते हैं खाने के लिए, सब भागवत में लिखा हुआ है। भगवान इतना सुलभ है कोई लड़का भी ब्रज में उनको गलवाई दे सकता है, खेल सकता है, खा सकता है, गोपियां उनको नचा सकती हैं, छाछ पर झूला झूलते हैं, साथ में घूमते हैं गाय चराने के लिए, रास करते हैं, इतना सुलभ है। ऐसे सुलभ ईश्वर को ये कह देना, नहीं ईश्वर वो है जिसको कोई जान नहीं सकता, उसको कोई देख नहीं सकता। ये लोग कहते हैं ईश्वर की परिभाषा, ईश्वर कौन है जिसको कोई जान ही नहीं सकता है, यही ज्ञान दे रहे, यही बताए कि उसको कोई जान नहीं सकता, कि यही ईश्वर का ज्ञान है, उसको कोई जान ही नहीं सकता। तो जान ही नहीं सकता तो है, जान ही नहीं सकता तो है या नहीं है इसका प्रमाण, कोई नहीं जान सकता है तो तुम भी नहीं जानते हो ना। तो बोलने वाला कह रहा है कि हम नहीं जान सकते, तुम नहीं जान सकते, तो इस प्रवचन का मतलब क्या हुआ? इसको बकवाद कहते हैं। बकवाद, बक जो बक करोती सब बक, बगुले को बक कहा जाता है। बगुले जब पेड़ पर बैठते हैं तो बस एक ही शब्द बोलते हैं, ब ब ब। इस तरह से जो बोले बिना मतलब अनन्वय, जिसका कोई अन्वय नहीं, कोई अर्थ नहीं, तो इसको बकवाद कहते, इसको बकवास कहते, बकवाद। जरा विचार कीजिए, कोई कहे कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसको मन में भी नहीं सोचा जा सकता है, अचिंत है, तो फिर ईश्वर है या नहीं है कैसे जान जाए, प्रमाण क्या है? तो एक प्रकार से भगवान को न मानो, यही प्रचार है संसार में, और मानना है तो गुरु को मानो, खत्म हो गया है, क्योंकि गुरु प्रकट ईश्वर है, और भगवान तो निराकार हो, आएगा कि नहीं आएगा, अरे तो प्रकट है, ठगने वाला भगवान आ गया है, जो प्रकट है ना, यही चल रहा है दुनिया में। तो इन सब रहस्यों का उद्घाटन कुंती महारानी कर रहे हैं कि वास्तव में आप परम ईश्वर हैं, आप पर ब्रह्म हैं, आप अधोक्षर हैं, अव्यय हैं, पर हम स्त्रियां कैसे जान सकती हैं, आपको तो परमहंस जन, मुनि जन और अमलात्मा महान पुरुष ही जान सकते हैं, और उनके हृदय में भक्ति संचार करने के लिए ही आप ये सब लीलाएं करते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए।